भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि और कबीर। डॉक्टर सत्यपाल शर्मा। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के उद्भव और विकास के मूल कारण की पड़ताल कदाचित सर्वाधिक विवादास्पद रही है। आचार्य शुक्ल ने इसे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की प्रतिक्रिया के परिणाम से जोड़ा, तो आचार्य द्विवेदी ने इसे भारतीय चिंतनधारा और परंपरा का स्वाभाविक विकास माना। आचार्य शुक्ल के अनुसार भारत में मुसलमानों का शासन स्थापित हो जाने के बाद हिंदू जनता का गौरव मर्दित हुआ। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे और देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी। पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने कामा अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान के भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। स्पष्ट है कि शुक्ल जी हिंदुओं के पराभव को भक्ति के अभ्युदय का बड़ा कारण मानते हैं। हिंदुओं के सम्मान पूर्वक जीने की लालसा ने उन्हें भक्ति की तरफ उन्मुख किया। दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति के उदय के संदर्भ में आचार्य शुक्ल के उपर्युक्त मत का विरोध करते हुए लिखा, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। द्विवेदी जी ने भक्ति के उदय के संदर्भ में इस्लाम के प्रभाव को नकारते हुए तर्क दिया कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरण ली। उनके अनुसार भक्ति की भावधारा यदि मुसलमानों के अत्याचार के कारण उमड़ी तो पहले उसे सिंध और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह दक्षिण में उत्पन्न हुई। द्विवेदी जी के तर्क को खारिज करना आसान नहीं है। आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के प्रयुक्त तर्कों और निष्कर्षों ने उत्तरवर्ती आलोचकों को दो धाराओं में बांट दिया। दोनों धाराओं के खेमे बंद आलोचकों ने भेद पर जोर देकर विरोध की खाई को निरंतर चौड़ा किया। वस्तुतः ऊपर से देखने पर शुक्ल जी और द्विवेदी जी के विचार परस्पर विरोधी लगते हैं और एक हद तक उनमें विरोध भी है, लेकिन गहराई से पड़ताल करने पर दोनों के विचारों में समानता के बिंदु भी मिलते हैं। इन समान बिंदुओं की तरफ से खेमेबंद आलोचक आंख मूंद लेते हैं। एकल दृष्टि के धनी आलोचकों ने हिंदी आलोचना का विकास नहीं बल्कि नुकसान किया है। आचार्य द्विवेदी द्वारा आचार्य शुक्ल के विचारों का विरोध करने पर शुक्ल जी के विरोधियों ने द्विवेदी जी को हाथों हाथ लिया। वे यह भूल जाते हैं कि द्विवेदी जी की तरह शुक्ल जी ने भी भक्ति का आरंभ दक्षिण भारत में माना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति के उदय में हिंदुओं का पराभव, निराशाजनक मनोवृत्ति तथा इस्लाम का अत्याचार को एकमात्र नहीं बल्कि एक कारण माना है। उन्हें यह ज्ञात था कि भक्ति का जो स्रोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। स्पष्ट है कि शुक्ल जी भक्ति के उदय में दक्षिण की परंपरा का योगदान मानते हैं। इसी तरह आचार्य द्विवेदी के कथन की पड़ताल करें तो यह पता चलता है कि वे भक्ति के उदय में इस्लाम के प्रभाव को सिरे से खारिज नहीं करते, क्योंकि कम से कम चार आना प्रभाव तो वे भी मानते हैं। वस्तुतः भक्ति के उदय और विकास में दोनों आचार्यों ने भारतीय परंपरा और इस्लाम के प्रभाव को स्वीकार किया है। दोनों के विचारों में अंतर यह है कि द्विवेदी जी ने भक्ति के उदय और विकास में परंपरा को अधिक महत्व दिया, जबकि शुक्ल जी ने इस्लाम के प्रभाव को। उत्तरवर्ती खेमेबंद आलोचकों ने आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के मतों को क्रमशः 100% इस्लाम की प्रतिक्रिया का परिणाम और 100% परंपरा का स्वाभाविक विकास के रूप में व्याख्यायित और प्रचारित करके हिंदी आलोचना में भ्रम फैलाया। उपरोक्त दोनों दृष्टिकोण अतिवादी हैं। असलियत यह है कि भक्ति का बीज दक्षिण भारत में पहले से मौजूद था। उत्तर भारत में इस्लाम के आक्रमण, अत्याचार और प्रसार से दक्षिण भारत में बीज रूप में विद्यमान भक्ति को पल्लवित, पुष्पित और विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण मिला। मुसलमानों के आक्रमण के कारण भारत की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में जो बदलाव आया उसने पहले से चली आ रही भक्तियों को तीव्र और व्यापक बना दिया। आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के बीच भेद की खाई को चौड़ा करने के लिए खेमेबंद आलोचकों के लिए जो बिंदु प्राणवायु की तरह काम करता है वह है कबीर संबंधी आचार्यों का मूल्यांकन। हिंदी आलोचना के विकास के साथ कबीर आलोचना के केंद्र में स्थापित होते जाते हैं। आरंभ में कबीर को समाज सुधारक, उपदेशक, रहस्यवादी संत के रूप में माना गया। बाद में चलकर उनका भक्त और कवि रूप प्रतिष्ठित हुआ। हिंदी की उत्तरवर्ती आलोचना में आचार्य शुक्ल को प्रायः कबीर का विरोधी माना जाता है और आचार्य द्विवेदी को समर्थक। यह सही है कि शुक्ल जी ने कबीर की कविता भाषा, सामाजिक विचार और भक्ति पद्धति की आलोचना की है और द्विवेदी जी ने कबीर को युगांतकारी कवि माना है। इसके बावजूद यह कहना या समझना उचित नहीं है कि कबीर और निर्गुण संत साहित्य शुक्ल जी की चिंताधारा में प्रतिपक्ष के रूप में मौजूद है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल उस साहित्य को महान मानते हैं जो लोक धर्म के अनुकूल हो। शुक्ल जी का लोक धर्म वर्णाश्रम धर्म से संबंध है। शुक्ल जी की दृष्टि में हिंदू समाज इतने आक्रमणों और संघर्षों के बाद भी सुरक्षित है तो इसका कारण वर्णाश्रम धर्म है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की रक्षा लोक धर्म है। इसी तरह वर्णाश्रम धर्म का विरोध सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन है। यह कहना होगा कि आचार्य शुक्ल लोक धर्म की सही कसौटी अपनाते हैं लेकिन उसके अर्थ का दायरा सीमित कर देते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी लोक में मात्र हिंदू की चिंता है, मुसलमानों की नहीं। इसी तरह हिंदू की चिंता करते हुए वे वर्णाश्रम के भीतर निहित विषमता की तरफ से आंख मूंद लेते हैं। शुक्ल जी कबीर पर एकेश्वरवाद और नाथपंथ का प्रभाव मानकर चल रहे थे। इन दोनों में ही कुछ बातें भारतीय भक्ति मार्ग के विरुद्ध थी, इसलिए वे कबीर की भक्ति पद्धति को विदेशी मानते हैं। कबीर की भक्ति के स्रोत के संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा, उन्होंने भारतीय ब्राह्मणवाद, ब्रह्मवाद के साथ सूफियों और भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। रामानंद को कबीर का दक्ष गुरु मानने के बावजूद शुक्ल जी कबीर को वैष्णव नहीं मानते, क्योंकि आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे। कबीर की आलोचना करते हुए शुक्ल जी का विचार है कि इसमें संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता तथा इसकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित, ऊटपटांग और सदुक्कड़ी है। लेकिन इससे कबीर का महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने ठीक मौके पर जनता के बड़े हिस्से को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से विमुख हो रहा था। इतना ही नहीं, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। आत्मगौरव का भाव जगाने का कार्य सामान्य नहीं है। इस्लाम के आक्रमण और अत्याचार के परिणाम स्वरूप हिंदू जनता का गौरव नष्ट हो रहा था। इस गौरव को जगाने का कार्य करने वाला कवि शुक्ल जी की दृष्टि में कम महत्वपूर्ण नहीं था। कबीर की महत्ता इस बात में भी है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी जिससे उनके मुख से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। शुक्ल जी ने कबीर की व्यंग प्रतिभा की ओर जो संकेत किया, आगे चलकर द्विवेदी जी ने उसे सिद्ध करने के लिए उस पर विस्तार से प्रकाश डाला। आचार्य द्विवेदी ने कबीर को भारतीय चिंतन के स्वाभाविक विकास के एक उत्कृष्ट कवि के रूप में स्थापित किया। भारतीय समाज के उन सभी विशेषताओं को इस्लाम पूर्व भारतीय समाज व धर्म में दिखलाया जो इस्लाम के संपर्क का परिणाम मानी जाती थी। उदाहरण के लिए, मूर्ति पूजा का विरोध भारत में पहले से होता रहा है। द्विवेदी जी के अनुसार कबीर की भक्ति वह लता है जो वैष्णव मत का बीज पाकर उत्पन्न हुई थी। कबीर में तीन धाराएं मिलती हैं, नाथपंथ का प्रभाव, सूफी मत का प्रभाव तथा रामानंद के जरिए प्राप्त हुआ वेदांत वैष्णव का प्रभाव। इसमें सूफी मत का प्रभाव अत्यंत क्षीण तथा रामानंद का प्रभाव सर्वाधिक है। निर्गुण भक्तों की विद्रोह चेतना, भावना, भाव प्रमणता, रूढ़ विरोधिता, खंडनात्मक वृत्ति और अखड़ता आदि को द्विवेदी जी ने पूर्व साधकों की देन माना है। इससे लगता है कि वे निर्गुण भक्तों पर इस्लाम का प्रभाव बिल्कुल नहीं मानना चाहते। लेकिन कबीर के संदर्भ में उन्होंने लिखा है, मुसलमान वंश में पालित होने के कारण उनमें एक प्रकार का साहसिक भाव आ गया था। यह मुस्लिम परिवार में पालित होने का उत्तम फल था। इनोडेट कामन स्पष्ट है कि द्विवेदी जी इस्लाम का प्रभाव आंशिक और सकारात्मक मानते थे। आचार्य द्विवेदी ने लोक धर्म का सही अर्थ ग्रहण किया। वे समाज और जनता में प्रचलित आचारों विचारों संस्कारों को लोक धर्म मानते हैं। उनके अनुसार कबीर की कविता का संबंध शास्त्र से कम और लोक धर्म से अधिक है। भक्ति साहित्य का आधार नाथों सिद्धों ने तैयार किया। कबीर पर नाथ पंथ का गहरा प्रभाव था। राम और उनकी भक्ति यह रामानंद को कबीर की देन है। कबीर के राम वह है जो सनातन तत्व है, उसका रूप नहीं रेखा नहीं। कबीर के राम पुराण प्रतिपादित अवतार नहीं थे, उनके राम गुणातीत हैं। वह तर्क और विद्या से नहीं बस प्रेम और अनुभव से ही जाना जा सकता है। इस भाव को बताने के लिए कबीरदास ने बार बार घूंगे का गुड़ कहकर उसे याद किया। कबीर को समाज सुधारक माना जाता था, लेकिन द्विवेदी जी के अनुसार कबीर का उद्देश्य न कविता करना था न समाज सुधार। उनका प्रथम प्रयोजन भक्ति था। आचार्य द्विवेदी कबीर की काव्यात्मकता और सामाजिक विचार को अहेतुक भक्ति का बाय प्रोडक्ट मानते हैं। इसके बावजूद कबीर को महत्व देते हुए उन्होंने लिखा है, नोटेड कामा, यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। इसी तरह कबीर के सामाजिक विचारों को महत्वपूर्ण मानते हुए भी द्विवेदी जी उन्हें समाज सुधारक नहीं मानते। इनोटेड कामा, कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिनसे समाज सुधार में सहायता मिल सकती है, पर इसलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। इनोटेड कामा बंद। कबीरदास समन्वयवादी भी नहीं थे, वे बायाडंबरों का विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे। उनका रास्ता समझौता का नहीं था। आचार्य शुक्ल ने कबीर के सामाजिक विचारों की आलोचना की, खास तौर से जब कबीर का प्रहार हिंदू धर्म पर है। आचार्य द्विवेदी को भी कबीर का यह स्वरूप खटकता है। कबीर को युगांतकारी पुरुष मानते हुए भी द्विवेदी जी ने कबीरदास की आंख मूंद कर हिंदू धर्म पर प्रहार करने वाली प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए लिखा, नोट कामा, वस्तुतः सारा हिंदू धर्म उनकी दृष्टि में एक भयाचार बहुत ढकोसला मात्र था। वे जानते ही नहीं कि पंडित के पास भी तत्व ज्ञान है। हिंदू धर्म पर कबीर के प्रहार को आचार्य द्विवेदी और आचार्य शुक्ल दोनों ही कमोवेश अनुचित मान रहे थे। कबीर के व्यंग प्रतिभा का संकेत आचार्य शुक्ल ने दिया था, इसे स्थापित करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा, डॉक्टर कामा, सच पूछा जाए तो आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक पैदा ही नहीं हुआ। डॉक्टर कामा, हाँ, भाषा के संदर्भ में आचार्य द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की मान्यता का प्रतिवाद करते हुए कबीर को वाणी का डिक्टेटर साबित किया। डॉक्टर कामा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। इनोट कामन, कहना गलत नहीं होगा कि कबीर के संदर्भ में लोक धर्म का मूल्यांकन करते हुए आचार्य शुक्ल से जो त्रुटि हुई, वही कबीर की भाषा के मूल्यांकन के संदर्भ में भी। आचार्य द्विवेदी ने इन त्रुटियों को दूर किया। कबीर पर नाथपंथ का प्रभाव, सामान्य मनुष्यत्व की भावना का विकास, निम्न श्रेणी की जनता में गौरव का भाव जगाना, व्यंग प्रतिभा आदि बिंदुओं पर आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी कमोवेश एकमत है। त्रुटियों के बावजूद आचार्य शुक्ल ने कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व की जिन विशेषताओं को सांकेतिक किया था, उनका आधार लेकर आचार्य द्विवेदी ने कबीर को अद्वितीय व्यक्ति करार दिया। उनके शब्दों में, नोटेड कामा, हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मस्ती फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटक कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। यह अतिशयोक्ति नहीं है। समाज की उत्तरोत्तर प्रगति में कबीर निरंतर अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के पीछे उद्देश्य दोनों के वैचारिक भेदों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उनमें समानता के बिंदुओं को तलाश करना रहा है। इसके पीछे प्रयोजन यह है कि साहित्य के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम एकल दृष्टि के बरक्स मुकम्मल दृष्टि डालें। इस दृष्टि के अनुसार कबीर मूलतः भक्त और प्रेम के कवि हैं। कबीर के यहाँ योग प्रेम के साधन के रूप में है। उनका ईश्वर प्रेम प्रकारांतर से समूची मनुष्यता से प्रेम है। भाईचारों के प्रति तीखापन का कड़वापन उसी मनुष्यता के प्रति प्रेम से उत्पन्न है। कबीर की कविता गहनतम मानसिक अनुभूति की परिचायक है। कहना गलत होगा कि गहरे अनुभव और जिज्ञासा से उत्पन्न दंश पाखंडी विनम्रता से अच्छा है। संदर्भ ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर।